Iran Radio Podcast.
یورپ میں جرمن دن بدن طاقتور ہو رہے تھے اور وہ بھی ایشیا اور افریقہ کی لوٹ مار میں اپنا حصہ چاہتے تھے۔ دوستو، دنیا کے اتہاس پر پوڈ کاسٹ کا یہ 43واں ایپیسوڈ ہے۔ ایران ریڈیو سے میں ہوں احمد عباس، آپ سبھی کو میرا سلام۔ تو ہم بات کر رہے تھے جرمنز کے بارے میں۔ برٹین اور روس جرمنی سے بھیڑنا چاہتے تھے تاکہ اس کی بڑھتی ہوئی طاقت پر لگام لگا سکیں اور پھر کوئی شکتی ان کے اپنیویشوں کے لیے خطرہ نہ بنے۔ اسی یوجنا کے تحت پہلے وشو یدھ کی زمین تیار ہوئی۔ 1914 میں یدھ کی شروعات ہوئی۔ ایران کے 18 ورشیہ شاہ نے یدھ میں تٹستھ رہنے کی گھوشنا کر دی۔ اس کے باوجود دکشن میں تیل کے کنوؤں کو عثمانی سینا سے سرکشت رکھنے کے لیے برٹین نے خوزستان میں اپنے سینک تعینات کر دیے۔ برٹین نے بوشہر میں سینک تعینات کیے اور بھارت کی سیماؤں کی سرکشا کے لیے پوروی ایران میں سینا بھیج دی۔ عثمانی شاسن نے بھی روس سے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے بہانے اتری ایران میں اپنی سینا بھیج دی اور روس کے خلاف لڑائی کا اعلان کر دیا۔ ان حملوں کے مقابلے میں قاجاری شاسن نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، حالانکہ ایران میں سب کچھ قاجاری شاسن تک ہی سیمت نہیں تھا۔ راجنیتی اور ارتھ ویوستھا پر ضرور راجاؤں کا نینترن تھا، لیکن ساماجک سمبندھ، دھارمک وشواس اور جیون شیلی دھرم اور دھرم گروؤں سے پربھاوت تھی۔ دھارمک ودوانوں کا لوگوں کے بیچ وشیش استھان تھا اور اسلام کی شکشائیں لوگوں کے دینک جیون میں پرچلت تھیں۔ اس سے یہ سنشچت تھا کہ ایران کے لوگوں کے خلاف بل پریوگ اور اتیاچار پربھاوی نہیں ہوگا۔ جب یدھ شروع ہوا تو نجف کے مہان اسلامی ودوانوں نے متر راشٹروں کے خلاف اور عثمانی شاسن کی رکشا کے لیے جہاد کی گھوشنا کر دی۔ ایرانی دھرم گروؤں نے بھی اس کا انوسرن کیا اور لوگوں سے حملہ وروں کا مقابلہ کرنے کا آہوان کیا۔ اتر میں مرزا کوچک خان جنگلی اور دکشن میں رئیس علی دلواری اور ان کے ساتھیوں نے روسیوں اور انگریزوں کے خلاف مورچہ سنبھالا۔ سانسدوں کے ایک سموہ نے راشٹریہ رکشا سمیتی کا گٹھن کیا۔ اس سمیتی میں سب سے مہتوپورن بھومیکا ایک دھرم گرو سید حسن مدرس نبھا رہے تھے، جنہوں نے اپنا پورا جیون ظلم اور انیائے کے خلاف سنگھرش میں بتایا تھا۔ انہوں نے راجدھانی کے نکٹ روسیوں کے خلاف مورچہ سنبھالا۔ یدھ کے سبھی مورچوں پر جرمن کمزور پڑتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے برٹین اور روس کو اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ ایک دوسرے مورچے پر اپنی پوزیشن مضبوط بنا سکیں اور ایران کے دکشن میں جن پرتیرودھ کو کچل سکیں۔ لیکن یدھ کی وجہ سے کھیت اور کھلیان نشٹ ہو چکے تھے، اس لیے ایران لڑنے والے روسی اور برٹش سپاہیوں کو رسد کی سخت ضرورت تھی۔ ان پرستھتیوں کے کارن ایران میں ایک بار پھر سے اکال پڑ گیا۔ بھوک سے ہر دن بڑی سنکھیا میں لوگ مرنے لگے۔ لوگ کھانے کی تلاش میں اپنے شہروں سے نکل رہے تھے، لیکن جہاں بھی جاتے تھے وہاں استھتی ویسی ہی تھی۔ سڑکوں پر لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ تٹستھ ایران میں ایرانی یدھ کا بھیانک چہرہ دیکھ رہے تھے۔ 1918 میں جب 4 سال بعد پہلا وشو یدھ سماپت ہوا تو عثمانی شاسن کا بھی پتن ہو چکا تھا۔ کچھ ہی سمے بعد روس میں بھی گرہ یدھ چھڑ گیا۔ ایران میں موجود روسی سینکوں کے بیچ پھوٹ پڑ گئی۔ دھیرے دھیرے روسی فوج ایران سے واپس لوٹ گئی، جس کے بعد برٹین کو اپنا پربھاؤ بڑھانے کا پورا موقع مل گیا۔ اس استھتی میں سنسد کے راشٹریہ پریشد نے چوتھی بار سکریتا دکھائی اور حسن مدرس سمیت سانسد سنسد میں اکٹھا ہوئے۔ لیکن شاہ نے ایک ایسے ویکتی کو اپنا پردھان منتری نیوکت کیا جو اس سے پہلے برٹین کے پرتی اپنی وفاداری ظاہر کر چکا تھا۔ مرزا حسن خان وسوق الدولہ نے برٹش راجدوت کے ساتھ خفیہ وارتہ شروع کر دی تھی۔ युद्ध में जीत हासिल करने वाले अंग्रेज जीत के नशे में मस्त थे और अब ईरान में उनके सामने कोई प्रतिद्वंद्वी भी नहीं था। ब्रिटेन ने वसूकुद्दौला से कहा कि सेना और अर्थव्यवस्था उसे सौंप दी जाए। इस समझौते के तहत ब्रिटेन द्वारा ईरान को कर्ज दिया जाना था ताकि वो अपनी सेना और अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कर सके। यह महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि अंग्रेज़ों ने गर्वपूर्ण संकेत देते हुए ईरान में अपने सैन्य अभियान का खर्च माफ़ कर दिया था। ब्रिटेन ने ईरान पर हमला किया था और यहाँ बड़ी संख्या में लोगों को मौत के घाट उतारा था। इसके अलावा युद्ध के कारण देश में फैलने वाले अकाल में भी हजारों लोगों की मौत हुई थी, लेकिन वो ईरान से अपने सैन्य अभियान का खर्च नहीं ले रहा था तो इसका एहसान जता रहा था। हालांकि उसने जो समझौता किया था उसके बाद पूरी तरह से ईरान की आज़ादी ख़त्म हो जाती। वसूकुद्दौला ने इस समझौते के लिए लंदन से 400,000 तुमान की रिश्वत और ऑर्डर ऑफ द बाथ का खिताब लिया था। ऑर्डर ऑफ द बाथ एक मानद आदेश है जो शूरवीरों को अंग्रेजी शासन के प्रति उनकी सेवाओं के सम्मान में प्रदान किया जाता था। इस बैज को बाथ बैज कहा जाता था और इसलिए कहा जाता था क्योंकि मध्य युग में शूरवीर इस बैज को प्राप्त करने से पहले शुद्धिकरण के संकेत के तौर पर बाथरूम जाते थे। संवैधानिक कानून के मुताबिक हर समझौते को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना जरूरी था, लेकिन जब संसद को इस अपमानजनक समझौते के बारे में पता चला तो उसने इसका विरोध किया। इस विरोध में सबसे आगे सैयद हसन मुदर्रिस का नाम था। नजफ के धर्मगुरुओं को भी जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया। जनता ने भी सांसदों और विद्वानों का अनुसरण करते हुए इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इतने बड़े पैमाने पर विरोध के बाद अहमद शाह को अपने प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वसूकुद्दौला के बर्खास्तगी के बाद 1919 का समझौता निष्प्रभावी हो गया। नए प्रधानमंत्री ने वादा किया कि जब भी संसद का सत्र बुलाया जाएगा इस समझौते की फिर से समीक्षा की जाएगी। इसी बहाने से ब्रिटिश विशेषज्ञों और अधिकारियों से कहा गया कि वे कुछ समय के लिए वापस लौट जाएं। अंग्रेज भी समझ गए कि इतने बड़े पैमाने पर विरोध के कारण ये समझौता व्यवहारिक नहीं हो सकेगा और उन्हें कोई दूसरा विकल्प खोजना होगा। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि संसद पर पूर्ण नियंत्रण के लिए शाह के पास पर्याप्त शक्ति नहीं है, इसलिए ब्रिटिश सरकार संसद और इसके सदस्यों को अपने प्रभाव के विस्तार में बाधा मानती थी। इसलिए उसने अपनी कठपुतली सरकार को शक्ति देकर संसद की शक्ति को कम करने का निर्णय लिया। ईरान में संवैधानिक क्रांति के बाद 15 वर्षों में लगभग 55 सरकारें बदल गईं। शाह द्वारा एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता था जो अपनी कैबिनेट का गठन करता था, लेकिन कुछ समय बाद सामने आने वाली समस्याओं और रूस और इंग्लैंड के हस्तक्षेप के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाता था, जिसके बाद किसी अन्य व्यक्ति को सरकार बनाने का काम सौंप दिया जाता था। इनमें से कुछ सरकारें तो 4 दिन भी नहीं चल सकीं। मंत्रियों के लगातार परिवर्तन होने के कारण देश के सभी मामले अस्त व्यस्त हो गए थे और देश भर में असुरक्षा और गरीबी फैल गई थी। हर कोई इस स्थिति से नाखुश था। ब्रिटिश योजना ये थी कि हर समस्या के लिए संवैधानिक प्रणाली की प्रभावहीनता को दोषी ठहराया जाए और गणतंत्रीय प्रणाली का उपयोग करके ईरानियों को एक नए जाल में फंसाया जाए, एक आजीवन राष्ट्रपति जो अंग्रेज़ों की बात सुने। इसके लिए ब्रिटेन ने कई ईरानी राजनेताओं के साथ बातचीत शुरू की, जिसके बाद सैन्य कमांडर रजा खान मीर पंज के नाम पर मोहर लगी। रजा खान मीर पंज खूंखार और सत्ता का लालची था, इसलिए वो ईरान में एक ऐसा शासन स्थापित कर सकता था जिसमें कोई आसानी से ब्रिटेन का विरोध ना कर सके। रजा खान ने संवैधानिक प्रणाली को गणतंत्र में बदलने का प्रस्ताव संसद में पेश किया, लेकिन आयतुल्ला मुदर्रिस और उनके साथियों ने जमकर इस प्रस्ताव का विरोध किया। वो जानते थे कि ऐसा गणतंत्र जिसका समर्थन इंग्लैंड करे तानाशाही के अलावा कुछ नहीं हो सकता। लोगों के प्रतिनिधि नहीं चाहते थे कि देश को अव्यवस्था से निकालकर तानाशाही के जाल में फंसा दें। मुदर्रिस और उनके साथियों के प्रयासों के कारण रजा खान का प्रस्ताव संसद में पारित न हो सका। यहाँ से रजा खान और आयतुल्ला मुदर्रिस के बीच दुश्मनी की बुनियाद पड़ गई। उसके बाद रजा खान ने सेना की एक टुकड़ी के साथ तेहरान की ओर कूच कर दिया। जब तेहरान में सेना के कमांडर जनरल हुमायूं को इस घटना की खबर मिली तो उन्होंने इस मूवमेंट का कारण पूछा। 4 महीने से वेतन प्राप्त नहीं करने वाले रजा खान और उसके सिपाहियों ने कहा, हम तेहरान आ रहे हैं ताकि अपना वेतन ले सकें और अपने परिजनों से मिल सकें। तेहरान में रजा खान और उसके सैनिकों के प्रवेश करते ही शहर की सुरक्षा छिन्न भिन्न हो गई और तेहरान में सरकार का पतन हो गया। सभी मंत्रालयों को बंद करने और लगभग 400 राजनीतिक हस्तियों की गिरफ्तारी के साथ ये सभी के लिए स्पष्ट हो गया कि सरकार का तख्ता पलट हो गया है। रजा खान ने सरकार और संसद को भंग कर दिया, लेकिन काजारी शाह के प्रति वफादारी का ऐलान किया। तख्तापलट की साजिश रचने वालों के साथ एक शख्स सैयद जियाउद्दीन तबातबाई भी थे। वो एक प्रसिद्ध पत्रकार थे जिनकी दोस्ती पर अंग्रेज वर्षों से भरोसा करते थे। अहमद शाह ने जब शहर को तख्ता पलट करने वालों के नियंत्रण में देखा तो उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया। सैयद जियाउद्दीन तबातबाई को प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि रजा खान मीरपंज ने रक्षा मंत्री के रूप में सेना का पुनर्निर्माण शुरू किया। इसके बाद आने वाली सभी सरकारों में 2.5 साल तक रजा खान अपने पद पर बना रहा। वो शुरू से ही प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना और सभी मंत्रालयों का कार्यभार क्यों नहीं संभाला, ये एक बड़ा सवाल है। शायद उस समय एक मजबूत सेना का होना किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा अहम था, या शायद तख्तापलट के बाद के शुरुआती दिनों में इस सैन्य अधिकारी के पास प्रधानमंत्री बनने का अनुभव या योग्यता नहीं थी। रजा खान के हाथों तख्ता पलट के 4 साल बाद चौथी संसद का पुनर्गठन किया गया। इस बार आयतुल्ला मुदर्रिस संसद में उपसभापति बने। उन्होंने सुधारवादी पार्टी की स्थापना की। उन्होंने तख्ता पलट में शामिल लोगों को संसद से निष्कासित कर दिया। हालांकि रजा खान अभी भी रक्षा मंत्रालय का प्रभारी था। उसने अपनी शक्तियाँ बढ़ाने का प्रयास जारी रखा, हालांकि सरकार उसकी ज्यादतियों का मुकाबला करने में असमर्थ थी, लेकिन संसद ने उसके विरोध का फैसला किया। जब 5वीं संसद का गठन हुआ तो मुदर्रिस और उनके समर्थक अल्पमत में आ गए और संसद में रजा खान के समर्थकों का बहुमत हो गया। रजा खान के समर्थकों ने संवैधानिक प्रणाली को गणतंत्र में बदलने की योजना फिर से पेश कर दी। मुदर्रिस और उनके समर्थकों ने फिर इसका कड़ा विरोध किया। सैयद हसन मुदर्रिस ने 3 बार रजा खान पर महाभियोग चलाने की कोशिश भी की, लेकिन उनके समर्थकों की कम संख्या के कारण वो सफल नहीं हो सके। हालांकि मुदर्रिस के मजबूत और तर्कपूर्ण विरोध और भाषणों के कारण रजा खान की योजना को मंजूरी नहीं मिल सकी। अब रजा खान और उसके सहयोगियों ने मुदर्रिस को रास्ते से हटाने का मन बना लिया। उन्होंने हमला करके उन्हें घायल कर दिया। संसद में उनकी अनुपस्थिति के दौरान रजा खान का प्रस्ताव पारित हो गया। इस घटना के 2 साल बाद सन 1925 में 5वीं संसद ने, जबकि लगभग 1/3 प्रतिनिधि अनुपस्थित थे, 80 मतों के समर्थन से काजार राजवंश को समाप्त कर दिया और रजा खान को ईरान का शाह चुन लिया। इंग्लैंड नए राजा को मान्यता देने वाला पहला देश था। ताजपोशी के बाद रजा शाह ने कुछ समय तक कुछ इस्लामी विद्वानों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, लेकिन शासन के मजबूत होने और विशेष रूप से तुर्की की यात्रा करने और अतातुर्क की नीतियों से प्रभावित होने के बाद धर्म को राजनीति से अलग करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। समाज में धार्मिक मान्यताओं को कमज़ोर करने के उद्देश्य से कई कड़े कदम उठाए गए, जैसे कि एक समान ड्रेस कोड का आदेश दिया गया, धर्मगुरुओं के विशेष लिबास के पहनने की अनुमति को ख़त्म कर दिया गया, धार्मिक सभाओं और मजलिसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। धार्मिक वर्ग से टकराव उस समय चरम पर पहुंच गया जब रजा खान ने आज़ादी के नाम पर ईरानी महिलाओं के हिजाब के खिलाफ आदेश लागू करने की कोशिश की। 1307 हिजरी शमसी में नौरोज के अवसर पर रजा खान की पत्नी ताजुल मुलुक अपनी बेटियों और कुछ दरबारी अधिकारियों की पत्नियों के साथ कुम स्थित हज़रत मासूमा के रोज़े पर ज़ियारत के लिए गई। ये सभी महिलाएं बिना हिजाब के पवित्र रोज़े में गईं, जिसका मकसद बेपर्दगी को आम करना था। कुम में इस्लामी शिक्षा केंद्र के संस्थापकों में से एक आयतुल्ला शेख मोहम्मद तकी बाफ़की को जब ये सूचना मिली कि शाह की पत्नी बिना हिजाब के रोज़े में पहुंची है, तो उन्होंने पहले अपने एक शिष्य से कहा कि वो उन्हें जाकर रोके, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इन महिलाओं ने इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया तो वो खुद गए और उनसे कहा कि रोज़े में हिजाब का पालन करें या फिर रोज़े से बाहर निकल जाएं। रोज़े में मौजूद ज़ायरीन ने भी आयतुल्ला बाफ़की का समर्थन किया और महिलाओं से हिजाब का पालन करने का अनुरोध किया। लोगों के कड़े विरोध के कारण रजा खान की पत्नी रोज़े से निकल जाने पर मजबूर हो गई। ताजुल मुलुक ने कुम में गवर्नर हाउस जाकर टेलीफोन पर शाह को इस घटना की सूचना दी। इसके बाद रजा खान कई सैन्य अधिकारियों के साथ कुम पहुंचा और पवित्र दरगाह में जाकर आयतुल्ला बाफकी पर लात घूंसों की बारिश कर दी। शाह और अधिकारियों की मारपीट में आयतुल्ला की एक पसली में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उसके बाद आयतुल्ला को तेहरान की जेल में बंद कर दिया गया और 6 महीने बाद रे में नज़रबंद कर दिया गया। इस घटना के 7 साल बाद मशहद के लोगों ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पवित्र रोज़े में पुरुषों के कपड़े बदलने के आदेश के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन को बुरी तरह से कुचल दिया गया। सुरक्षा बलों की बर्बरता में 1600 लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। उसके बाद मशहद के वरिष्ठ धर्मगुरुओं की धरपकड़ शुरू हो गई और उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। ब्रिटेन और उसका पिट्ठू तानाशाह सोच रहे थे कि जिस तरह से ईरान की जनता उनकी अय्याशियों, धमकियों और लूटमार पर खामोश रही, शायद धर्म विरोधी कार्यों के प्रति भी चुप रहेगी और धीरे धीरे नई जीवन शैली को कबूल कर लेगी। अगर उन्हें पता होता कि उनके धर्म विरोधी फैसलों के परिणाम स्वरूप वर्षों बाद एक बड़ी क्रांति उत्पन्न होगी तो शायद वो कभी इस तरह की गलती ना करते। दोस्तों, ये पॉडकास्ट ईरान रेडियो द्वारा तैयार किया गया था। अगर आप दूसरे दिलचस्प विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर विजिट कर सकते हैं।